मीठी नमकीन आंध्र प्रदेश की एक लोक कथा। कथा और अनुवाद संध्या राव, चित्र श्री विद्या नटराजन, आवाज मधु अग्रवाल। बंगारम्मा और उसका पति पेंचिलैया नरसनपेटा नाम के एक गांव में रहते थे। वैसे तो उनके घर में सुख शांति छाई रहती थी, पर आज नहीं। मैं बस इसी दिन की राह देख रही थी, बंगारम्मा ने पेंचिलैया से कहा, बरसों बाद आज गोरन गारू हमारे गांव आए हैं। बचपन में मैंने उनसे खूब सारी कहानियां सुनी थीं। अब देखो तुम्हें भी सुनने का मौका मिल रहा है। गोरन गारू? कौन गोरन गारू? पेंचिलैया ने पूछा। अयो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, बंगारम्मा बोली। गोदावरी नदी के इस पार गोरन गारू सबसे रोमांचक कथाकार हैं। जब वे कहानियां सुनाते हैं तो मानो कविता सुना रहे हों, भगवान का संगीत सुना रहे हों। पेंचिलैया ने कहा, जैसे गाय अपने बछड़े को बुला रही हो, जैसे खेत में औरतें काम कर रही हों। उफ, तुम कुछ नहीं जानते, बंगारम्मा बोली। बेहतर होगा तुम गोरन गारू की कहानियां सुनने चलो, तब शायद समझ में आए कि मैं क्या कह रही हूं। जैसे बंगारम्मा ने कहा था, गोरन गारू अपनी हरी कथाओं के लिए बहुत मशहूर थे। अगले 10 दिन तक हर रात वे नरसनपेटा में रामायण की कहानी सुनाने वाले थे। उस सुबह ही वे वहां पहुंचे थे और मुखिया के घर में ठहरे हुए थे। उस महान व्यक्ति की एक झलक पाने के लिए गांव के बच्चे सारा दिन वहीं आसपास मंडरा रहे थे। पिताजी कहते हैं कि वे 7 गज लंबे हैं, एक छोटे लड़के ने कहा। माँ कहती हैं उनका चेहरा चंदनम बोलम्लू यानी कि लाल चंदन वाली गुड़िया जैसा है, एक छोटी सी लड़की बोली। पता है दादी कहती हैं कि वे उड़ सकते हैं, एक और छोटी लड़की ने कहा। वो देखो वहां, हरी बाबू चिल्लाया। कहां कहां? सब धक्कम धक्का लगाते हुए गोरन गारू को देखने की कोशिश करने लगे। खिड़की से देखा तो वे नीचे चटाई पर लेटे आराम कर रहे थे। ये तो बस आदमी हैं, हरी बाबू की छोटी बहन प्रभावती रुआ सी होकर बोली। उस रात चांद जल्दी निकल आया। पूरन मासी को अभी 10 दिन बाकी थे। कमला उस्तावा आ रही हो? अंधेरे में एक आदमी की आवाज सुनाई दी। हाँ या आ रही हूं, रुको तो, बच्ची की आवाज आई। वह पीछे नहीं रह जाना चाहती थी। कम ही लोग थे जो उस रात घर पर रहे। बच्चे बड़े सभी फटाफट रात का खाना खाकर बरगद की ओर निकल पड़े, सभी सिवाय पेंचिलैया के। नरसैया मैं खूब मेहनत करता हूँ, पेंचिलैया ने अपने मित्र से कहा। पूरे 7 घंटे की नींद चाहिए मुझे, पर मेरी पत्नी पीछा ही नहीं छोड़ती। कहती है कि गोरन गारू की कहानी सुनने मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं? बरगद के पास एक छप्पड़ सा बनाया हुआ था, उसके नीचे लकड़ी के मंच पर खड़े थे गोरन गारू। उनके दोनों तरफ जल रहे थे बड़े बड़े दीपक, जिनकी रोशनी उनकी आंखों में जगमगा रही थी। उनका चेहरा दमक रहा था। गला 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 गला, उनके पैरों के घुंघरू बज उठे। बहुत साल पहले लहराती नदियों और सरसराते जंगलों के राज्य में एक नेक और न्यायी राजा था, उन्होंने कहानी शुरू की। गांव वाले जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगह पर ठीक ठाक बैठ गए और फिर शांत होकर सुनने लगे। पेंचिलैया देर से आया। वह सबके पीछे जाकर बैठा और बैठते ही सो गया। उस रात जब कहानी खत्म हुई तो सबको प्रसाद में एक एक लड्डू मिला, किशमिश भरा मीठा मीठा। पेंचिलैया को भी मिला, पर उसको उठा जगा कर देना पड़ा। नींद भरी आंखें लेकर जब वह घर पहुंचा तो बंगा रम्मा ने पूछा, बोलो कैसी रही हरी कथा? मीठी, पेंचिलैया बोला। उसे लड्डू का स्वाद जो याद आ रहा था। हाँ, बंगा रम्मा ने कहा, रामायण की शुरुआत कितनी मीठी है। आज फिर हरी कथा के लिए जाना पड़ेगा क्या? अगले दिन पेंचिलैया ने अपनी पत्नी से पूछा। बिल्कुल, वह बोली, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, बेचारा पेंचिलैया बोला। पर बंगा रम्मा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, उसने कहा। उस रात भी पेंचिलैया एकदम पीछे जाकर बैठा। चलो आज जरा आराम से बैठा जाए, उसने अपने आप से कहा। पैर आगे पसार कर अपने हाथों पर सिर टिकाया और पल भर में सो गया। मृदुल स्वर में गोरण गारू ने सुनाया कैसे राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। फिर सीता का अपहरण, कैसे रावण उन्हें घसीट कर दूर लंका राज्य में ले गया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटके। राम ने पक्षियों से पूछा, हिरणों से पूछा, हवा से विनती की, बोलो सीता को कहीं देखा है? जैसे जैसे कथा दिलचस्प होती गई, गांव वाले गोरण गारू के नजदीक खिसकते गए। हरी बाबू पेंचिलैया की बगल में था। वहां पीछे उसे ठीक से दिखाई ना देने के कारण वह पेंचिलैया पर टेक लगाए हुए बैठा था। जब कथा समाप्त हुई और घर लौटने का समय आया, पेंचिलैया उठ बैठा और अपने दाएं कंधे को मलने लगा। ऐसा दर्द हो रहा था मानो कोई भारी चीज उस पर रखी गई हो। बंगा रम्मा ने जब पूछा कि रामायण कैसी रही, तो पेंचिलैया ने कंधा दबाते हुए जवाब दिया, भारी, बहुत भारी। अवुनु अवुनु, बंगा रम्मा बोली। हाँ हाँ, श्री राम की कथा कभी कभी दिल पर बहुत ही भारी होती है, खासकर जब उन्हें वनवास भेजा जाता है। रामायण की तीसरी रात को पेंचिलैया ने बैठने की तकलीफ भी नहीं की। सर को हाथ पर रख कर वह एकदम लेट गया और कुछ ही देर में खर्राटे लेने शुरू कर दिए। खर्र। कहानी खत्म होने पर सभी घर चले गए। पेंचिलैया ही एक था जो सोता रहा, मुंह खोले खर्राटे लेते। पास में एक छोटा सा काला कुत्ता भी सोया हुआ था। सूरज उगने पर कुत्ता उठा और उसने अपना बदन खूब झंझोड़ा। उसके बाद पेंचिलैया के पास जाकर उसके खुले मुंह में, आपको तो पता ही होगा उसने क्या कर दिया। छी, पेंचिलैया ने एकदम से उठकर थूका और आंखें रगड़ने लगा। अर्ग, उसने गले को इतनी जोर से साफ किया कि कुत्ता डर के मारे हुआते हुआते वहां से भाग गया। मुंह का स्वाद इतना गंदा था कि उसे धोने के लिए पेंचिलैया दौड़कर घर गया। जब बंगा रम्मा ने पूछा कि रामायण कथा की तीसरी रात कैसी रही, तो पेंचिलैया ने कहा, भद्दी, बहुत नमकीन। अर्ग, नमकीन क्या मतलब नमकीन, उसने पूछा। पता नहीं, नमकीन बस, पेंचिलैया ने जवाब दिया। कैसे पता नहीं, बोलो रामायण नमकीन कैसे हो सकती है? तुमने रामायण सुनी भी या नहीं, बंगारम्मा चिल्लाई। इधर मैं सोच रही हूँ कि अब तुम कितने भले और होशियार हो गए हो और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाना चाहते हो, बंगारम्मा गुस्से में बोली। बेचारा पेंचिलैया फंस गया। उस रात पेंचिलैया के साथ बंगारम्मा भी हरी कथा सुनने गई। अब वह कैसे सोता? बंगारम्मा ने पेंचिलैया को बिल्कुल सामने जाकर बिठा दिया। आज तो उसे ढंग से बिना सोए हरी कथा सुननी ही थी, वरना बंगारम्मा क्या कहती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि पेंचिलैया को नींद आई ही नहीं। वह गोरण गारू की कथा कारिता में पूरी तरह मगन हो गया। गोरण गारू कथा के उस अंश में पहुंचे थे जहां राम का दूत हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचता है। वहां रावण ने सीता को बंदी बनाकर रखा है। हनुमान सीता को ये बताने आया है कि राम उन्हें बचाने के लिए आने ही वाले हैं। उसके पास राम की अंगूठी है, यह साबित करने के लिए कि राम ने ही उसे भेजा है। हनुमान पेड़ पर छिप गया। नीचे बैठी थी सीता। गोरण गारू ने कहा। हनुमान ने अपने हाथ में रखी हुई अंगूठी को देखा, श्री राम की दी हुई अंगूठी। नीचे देखा सीता को, पहरेदार औरतों से घिरी हुई। अंगूठी सीता तक कैसे पहुंचेगी, उसने सोचा। जब वे अकेली बैठी होंगी तब मैं अंगूठी को नीचे फेंकूंगा और फिर। और हनुमान के हाथ से अंगूठी फिसल गई। सन्नाटा छा गया, कोई हिला तक नहीं। हनुमान के हाथ से अंगूठी फिसल गई। गोरण गारू उत्तेजित होकर बोले। वे झूमने लगे, ताली बजाने लगे, पैर थपथपाने लगे, घुंघरू की आवाज जोर जोर से गूंजने लगी। अब हनुमंतुड़ू क्या करता। अचानक एक आवाज सुनाई दी। फिक्र मत करो हनुमंता, मैं हूं ना। सब मुड़ मुड़ कर इधर उधर देखने लगे, फुसफुसाने लगे। किसकी आवाज थी ये? आवाज पेंचिलैया की थी। हनुमंता, हनुमंता, पेंचिलैया ने चिल्लाया और गोरण गारू की ओर छलांग लगाई। उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उनको दी। जाओ, उसने कहा, जाओ इसे सीता अम्मा को दे दो। बड़ी गंभीरता से गोरण गारू ने अंगूठी को स्वीकार किया और कहानी को आगे बढ़ाया। और फिर हनुमान ने सीता को अंगूठी दे दी। उन्होंने कहा, पेंचिलैया, पेंचिलैया। सभा में हाहाकार मच गई। रामायण के जादू में लोग ऐसे खो गए थे कि वे भूल गए कि गोरण गारू सिर्फ एक कहानी सुना रहे थे। देखा पेंचिलैया कैसे उछल कर आया। घर लौटते समय गांव वाले मरमराए, वह तो पुण्य आत्मा है। हाँ, उस दिन से जब भी नरसन पेटा में हरी कथा होती, पेंचिलैया जरूर जाते और बंगारम्मा, उसे तो खुश होना ही था। धन्यवाद।